यहाँ पर इन्होंने स्मरणात्मक और अनुभवात्मक दो तरह की बुद्धि होती है, दो तरह का ज्ञान होता है, ये पूर्व पाठ में बताया। आगे फिर विचार करते हैं कि कुछ दार्शनिकों का ये कहना है कि ज्ञान जो होता है वह हमेशा जो है साकार ही होता है, निराकार ज्ञान नहीं होता है। जैसे घट का जो ज्ञान होगा उस ज्ञान में घट का आकार रहेगा, पट का जो ज्ञान होगा उसमें ज्ञान में पट का आकार रहेगा, ज्ञान में कोई ना कोई आकार रहता ही है। इसलिए कुछ दार्शनिकों का मानना है कि ज्ञान हमेशा साकार ही होता है, लेकिन न्याय दर्शन का मानना है कि ज्ञान जो है वह निराकार ही होता है, साकार नहीं होता। वही बात बता रहे हैं यहाँ, सर्वंच ज्ञानम निराकारम एव, कि सभी तरह का जो ज्ञान है वह निराकार ही होता है, माने आकार रहित ही होता है, ज्ञान का अपना कोई आकार नहीं होता। न तो ज्ञाने अर्थेन स्वस्य आकारो जन्यते, ज्ञान में अर्थ के द्वारा माने विषय के द्वारा स्वस्य आकारो न जन्यते, अपना आकार जो है उस ज्ञान में पैदा वह नहीं करता है, माने विषय जो है ज्ञान में अपना आकार उत्पन्न कर देता है, ऐसा जो मानना है ये नहीं, ऐसी बात नहीं है, ये सही नहीं है। ज्ञान में विषय अपना आकार उत्पन्न नहीं करता, कहा कि क्यों, तो आगे कहते हैं साकार ज्ञानवाद निराकरणार्थ, कहा कि न्याय दर्शन में साकार ज्ञानवाद जो है, साकार ज्ञानवाद बाद माने सिद्धांत, तो साकार ज्ञानवाद क्या है, जो मैंने बताया था कि ज्ञान जो है हमेशा साकार ही होता है, निराकार नहीं होता है, इस तरह का जो वाद है इसी का नाम है साकार ज्ञानवाद। और इस साकार ज्ञानवाद का निराकरण जो है किया गया है न्याय दर्शन में, इसीलिए न्याय दर्शन की मान्यता है कि सर्वंच ज्ञानम निराकारम एव, सारे ज्ञान जो है निराकार ही होते हैं, आकार से रहित ही होते हैं स्वतः। अतएव आकारेण अर्थानुमानम अपि निरस्तम, और साकार ज्ञानवाद का निराकरण किया गया है न्याय दर्शन में, इसीलिए ये भी जो कोई कहते हैं कि आकारेण अर्थानुमानम, आकार के को देख करके पदार्थ का अनुमान होता है या विषय का अनुमान होता है, ऐसा जो कहने वाले हैं उनकी बात भी निरस्त हो जाती है, निरस्त होती है माने खंडित हो जाती है। अब सबका एक ही वाक्य में उत्तर दे रहे हैं कि कैसे साकार ज्ञानवाद का निराकरण किया गया है न्याय दर्शन में, और कैसे जो है आकार से अर्थ के अनुमान की बात खंडित हो गई है, तो उसके लिए एक ही शब्द में कहते हैं कि प्रत्यक्ष सिद्धत्वाद घटादे है, कि घट आदि जो है या तो प्रत्यक्ष सिद्ध है तो इसमें अनुमान की जरूरत क्या है, इसको अनुमान के द्वारा घट आदि को जो है सिद्ध करने की क्या जरूरत है, तो प्रत्यक्ष में घट जो है दिखाई देता है तो वह आकार घट का नहीं मान करके हम ज्ञान का आकार जो है ना घट मानेंगे, इसमें कौन सी चतुराई, ऐसी कोई चतुराई नहीं है। तो तात्पर्य यही है कि प्रत्यक्ष किम प्रमाण, अगर प्रत्यक्ष कोई वस्तु है तो उसके लिए किसी प्रमाण की जरूरत नहीं होती है, उसको मान ही लेना चाहिए, उसके अगेंस्ट जो है कुछ भी कहना वो बात सही नहीं है। सर्वं ज्ञानम अर्थ निरूप्यम, हाँ ये बात जरूर है कि ज्ञान स्वयं में निराकार होता है, लेकिन उस ज्ञान का जब निरूपण करेंगे माने उस ज्ञान के स्वरूप को जब आप बताएंगे तो उस समय में आपको अर्थ की आवश्यकता होगी, विषय की आवश्यकता होगी, उस समय में विषय को लेकर के ज्ञान का निरूपण किया जाता है, ये बात है। वही कहा कि सर्वं ज्ञानम अर्थ निरूप्यम, सभी ज्ञान स्वयं में निराकार है लेकिन जब उसका निरूपण होता है तो उस समय में अर्थ के द्वारा उसका निरूपण होता है। अर्थ प्रतिबद्धस्यैव तस्य मनसा घटक ज्ञानवान अहम् इत्येतन मात्रम गम्यते, कहा कि अर्थ प्रतिबद्धस्यैव, अर्थ से जो प्रतिबद्ध ज्ञान है माने अर्थ से जुड़ा हुआ जो ज्ञान है उसी ज्ञान का मनसा माने मन के द्वारा क्या होता है अनुव्यवसाय होता है। ये अनुव्यवसाय शब्द पहले आया हुआ है, माने एक जो ज्ञान पहले हुआ माने जो एक बार ज्ञान उत्पन्न हुआ और ज्ञान उत्पन्न होने के बाद जो मन में ये होता है कि मैं इस चीज को जानता हूँ, तो इस तरह का जो मैं इस चीज को जानता हूँ इस तरह का जो मन में ज्ञान होता है इसी का नाम है अनुव्यवसाय। तो यहाँ कहते हैं कि अर्थ प्रतिबद्ध जो है ज्ञान, उसी ज्ञान का मन के द्वारा ग्रहण होता है। तो ज्ञान का जो मन के द्वारा ग्रहण होना है उसी का नाम है अनुव्यवसाय। और यहाँ पर कैसा अनुव्यवसाय हुआ, तो घटक ज्ञानवान अहम इत्येतन मात्रम गम्यते। ताकि जब घट ज्ञान उत्पन्न होता है उसके बाद अनुव्यवसाय होता है, तो क्या क्या होता है कि घटक ज्ञानवान अहम, मैं घट ज्ञान से युक्त हूँ, ऐसा जो है अनुव्यवसाय होता है मन के द्वारा। न तो ज्ञानवान अहम, मैं ज्ञानवान हूँ, इस तरह का अनुव्यवसाय नहीं होता। इससे क्या सिद्ध हुआ, घट ज्ञानवान अहम ऐसा अनुव्यवसाय होता है, ज्ञानवान अहम ऐसा अनुव्यवसाय नहीं होता। इससे ये सिद्ध हुआ कि ज्ञान का जो है ना निरूपक जो है वह अर्थ होता है, विषय होता है। तो अनुव्यवसाय के समय में घट को लेकर के ही घटक ज्ञानवान अहम ऐसा अनुव्यवसाय होता है, घट को छोड़ करके सीधे ज्ञानवान अहम इस तरह का अनुव्यवसाय नहीं होता। क्योंकि बिना घट के, घट यहाँ पर प्रतीक है अर्थ का या विषय का, तो बिना अर्थ के या बिना विषय के जो है ज्ञान का निरूपण संभव नहीं है। आगे मन नाम का जो इंद्रिय है उसके बारे में कहते हैं कि अंतर इंद्रियम मनः तच्च उक्तमेव, कहा कि मन के बारे में पहले कह दिया गया है। यह जो मन नाम का इंद्रिय है ये अंतर इंद्रिय है, माने आंतरिक इंद्रिय है। छह जो इंद्रियां हैं न्याय दर्शन से सम्मत, उसमें पांच जो हैं बाह्य इंद्रिय हैं और मन नाम का इंद्रिय जो है वह आंतरिक इंद्रिय के अंतर्गत आता है। इसके बाद कहते हैं कि प्रवृत्ति ही धर्माधर्ममयी यागादि क्रिया। प्रवृत्ति का मतलब बता रहे हैं कि प्रवृत्ति क्या होता है, होती है तो कहते हैं कि धर्म अधर्ममयी यागादि क्रिया। धर्ममयी क्रिया और अधर्ममयी क्रिया जो है उस क्रिया का नाम ही है प्रवृत्ति। माने ऐसी क्रिया जिससे कि धर्म हो और ऐसी क्रिया जिससे कि अधर्म हो, तो इस तरह की जो क्रिया होगी उस क्रिया का ही नाम है प्रवृत्ति। उसमें एक उदाहरण दे दिया याग आदि क्रिया, याग माने यज्ञ, यज्ञ आदि जो क्रिया है उसी का नाम है प्रवृत्ति। क्योंकि यज्ञ आदि क्रिया से धर्माधर्म जो है वह उत्पन्न होता है। तस्या जगत व्यवहार जगत व्यवहार साधक, तस्या माने प्रवृत्तिया, प्रवृत्ति जो है वो जगत का व्यवहार का साधक होता है। क्योंकि हम लोग जो भी काम करते हैं वो सारा काम क्या है, वो प्रवृत्ति है, और उसी प्रवृत्ति से ही तो संसार का व्यवहार चलता है। अगर हम लोग क्रिया न करें तो जगत का व्यवहार रुक जाएगा। इसलिए कहा कि प्रवृत्ति ही जो है वो जगत व्यवहार का साधक है। आगे फिर कहते हैं दोषाह राग द्वेष मोहाह। अब दोष की बात आई थी कि दोष कितने हैं, तो कहा कि राग द्वेष मोहाह, राग नाम का दोष, द्वेष नाम का दोष और मोह नाम का दोष, ये तीन तरह के दोष होते हैं। तो राग किसे कहते हैं, तो कहते हैं कि राग इच्छा, इच्छा का नाम है राग। द्वेष किसको कहते हैं, तो द्वेषो मन्युः क्रोधः इति यावत्। द्वेष का अर्थ जो होता है वो होता है मन्यु, मन्यु मतलब क्रोध। तो क्रोध, मन्यु और द्वेष ये सब पर्यायवाची शब्द हैं। और लास्ट में मोह की बात आई कि मोह किसे कहते हैं, तो मोहो मिथ्या ज्ञानम विपर्यय इति यावत्। मिथ्या ज्ञान को मोह कहा जाता है। कथन का अर्जुन को मोह उत्पन्न हो गया था, तो फिर भगवान वासुदेव कृष्ण ने जो है उस गीता का उपदेश दिया था। तो मोह उत्पन्न हो गया था मतलब मिथ्या ज्ञान उत्पन्न हो गया था। इसको ये भी कह सकते हैं कि विपर्यय हो गया था, क्योंकि विपर्यय, भ्रम, मिथ्या ज्ञान ये सब के सब पर्यायवाची शब्द हैं। तो मोह का अर्थ बताया मिथ्या ज्ञानम विपर्यय। फिर आया प्रत्यभाव, ये सारे शब्द पहले आ चुके हैं, उस समय में इसका जो है परिभाषा, इसके इसका अर्थ नहीं बताया गया था, हमने बताया था अपनी ओर से, यहाँ पर आपको पुस्तक में शास्त्र में बताया जा रहा है। पुनः उत्पत्ति ही प्रत्यभाव, प्रत्यभाव का मैंने पुनर्जन्म अर्थ बताया था, याद होगा आपको। तो इसमें वही कह रहे हैं कि पुनः उत्पत्ति, फिर से जो उत्पत्ति होती है उसी का नाम है प्रत्यभाव। सच आत्मनः पूर्व देह निवृत्ति। अब कहा कि ये पुनर्जन्म क्या है, पुनः उत्पत्ति क्या है, तो कहते हैं कि आत्मनः पूर्व देह निवृत्ति, पूर्व वाला जो देह है, पहले वाला जो देह है उससे आत्मा की निवृत्ति होना, और अपूर्व देह संघात लाभ, और जो पहले देह नहीं था उस देह ऐसा जो अपूर्व देह है उसके संघात का लाभ माने उसके देह देह के स्वरूप का लाभ जो है पूर्व देह का की निवृत्ति और अपूर्व देह की प्राप्ति कह लीजिए, ये जो है इसी का नाम है प्रत्यभाव अथवा पुनः उत्पत्ति अथवा पुनर्जन्म। फिर आगे कहते हैं फलम, फलम पुनः, फल क्या है तो फलम पुनः भोग, भोग का नाम जो है वह फल होता है और वह भोग दो प्रकार का होता है, सुख दुख अन्यतर साक्षात्कार। अन्यतर आप जानते हैं दो में से एक के लिए अन्यतर शब्द का प्रयोग होता है, तो सुख अथवा दुख इन दोनों में से किसी एक का जो साक्षात्कार है इसी को हम भोग कहते हैं, इसी को हम फल कहते हैं। फिर पीड़ा दुखम, दुख का नाम ही है पीड़ा, तच्च उत्तम एवं, वह जो है पहले कहा गया है दुख के बारे में। फिर है मोक्ष, ये अपवर्ग, मोक्ष अपवर्ग, अपवर्ग शब्द आया था तो अपवर्ग किसको कहते हैं तो मोक्ष, मोक्ष को ही हम अपवर्ग कहते हैं। यहाँ पर जो है थोड़ा सा आपको गंभीरता से सुनना समझना होगा, न्याय दर्शन में किस तरह का अपवर्ग माना गया, किस तरह का मोक्ष माना गया वो यहाँ पर आपको बताया जाएगा। ताकि स्वच एक विंशति प्रभेद भिन्नस्य, यह जो अपवर्ग है मोक्ष है न्याय शास्त्र का, वह एक विंशति प्रभेद से भिन्न जो दुख है उसकी आत्यंतिक निवृत्ति का नाम है। ये एक विंशति प्रभेद क्या है तो 21 प्रकार के जो तत्व हैं उसी को कहा गया एक विंशति प्रभेद। तो ये जो 21 प्रकार के दुखों की गणना की गई है इसको हम संक्षेप में अगर बताना चाहें तो ये बता सकते हैं कि जैसे अति 6 ज्ञानेंद्रिय हो गए, ठीक है, घ्राण रसन चक्षु त्वक स्रोत और मन, ये 6 ज्ञानेंद्रिय हो गए और इनके 6 विषय हो गए, क्या तो गंध रस रूप स्पर्श शब्द और जो आत्मगुण है, आत्मगुण होते हैं ना आत्मा के विशेष गुण जो होते हैं वो, तो ये 6 विषय हो गए। तो 6 ज्ञानेंद्रिय और 6 विषय तो 6 × 12 हो गया, और इन विषयों के इंद्रिय जन्य जो 6 प्रकार के अनुभव भी होंगे तो वो अनुभव भी ले लीजिए तो 18 हो गए, और शरीर 19 हो गया, और सुख, सुख को भी जो है ना इसी के अंतर्गत रखेंगे तो क्या हो गया 20 हो गया, और एक जो है वो शायद ये जीवात्मा जीव जो है उसको रखा है इन्होंने, तो इस तरह से। और ऐसे खैर ये आगे कहीं ये बताने वाले भी होंगे, तो चलिए। तो ये जो एक विंशति प्रभेद जो है, एक विंशति प्रकार के जो ये दुख के भेद हैं, पीड़ा के भेद हैं, इनसे भिन्न जो दुख की आत्यंतिक निवृत्ति है, दुख की निवृत्ति होना, निवृत्ति माने छुटकारा, और आत्यंतिकी निवृत्ति होना, ये इसको मैं बाद में बताऊंगा कि दुख की जो आत्यंतिक निवृत्ति है उसी का नाम है मोक्ष न्याय दर्शन के सिद्धांत में। और यह जो दुख की आत्यंतिक निवृत्ति होनी चाहिए वो कैसी होनी चाहिए तो एक विंशति प्रभेद भिन्न होनी चाहिए। ये जो अभी मैंने बताया कि 6 इंद्रिय, 6 जो है उनके विषय, 6 उनके अनुभव, और फिर जो है शरीर और सुख और दुख, बिल्कुल सुख और दुख दोनों की गणना करेंगे तो इस तरह से ये 21 जो हैं इनसे भिन्न जो दुख की निवृत्ति है उसी का नाम है यहाँ पर मोक्ष। आत्यंतिक की निवृत्ति की जहाँ तक बात है, ये आत्यंतिकता क्या है तो इसको कहते हैं दुख पूर्वत्वाभाव। ये परीक्षा में भी पूछा जा सकता है कि निवृत्ति की आत्यंतिकता क्या है अथवा आत्यंतिक निवृत्ति किसे कहते हैं, तो जिस निवृत्ति में दुख पूर्वत्व का अभाव हो, माने जिस निवृत्ति से पहले पूर्व में दुख न हो उसी का नाम है आत्यंत की निवृत्ति। फिर से सुन लीजिए, जिस दुख से पूर्व दुख का, जिस निवृत्ति से पूर्व दुख का अभाव हो उस निवृत्ति का नाम है आत्यंत की निवृत्ति। और वह जो आत्यंत की निवृत्ति होनी चाहिए वो कैसी होनी चाहिए तो ये जो 21 प्रकार के कुल दुख है ना, इन दुखों से भिन्न वह हो, तो उसी का नाम है यहाँ पर मोक्ष। इसी को बताते हैं कि दुख पूर्वत्वाभाव जो है उसको अगर समझना हो तो ये समझिए कि जिस निवृत्ति में दुख की पूर्ववर्तिता न हो ऐसी निवृत्ति वही हो सकती है जिसके हो जाने के बाद फिर कभी दुख का उदय न हो। अतः दुखों की आत्यंतिक निवृत्ति अंतिम जन्म के बाद ही होती है। आपने सुना होगा कि 84 करोड़ योनियों में जो है व्यक्ति का जन्म होता रहता है, तो जब अंतिम जन्म होता है उसके बाद जो है इस तरह की आत्यंतिक निवृत्ति होती है, क्योंकि उसके बाद जो है ना शरीर तो रहता नहीं है, शरीर नहीं रहेगा तो कोई भी दुख जो है उसको व्यक्ति को नहीं होगा। तो अंतिम जन्म के बाद दुख की आत्यंतिक निवृत्ति होती है और वही जो आत्यंतिक निवृत्ति है उसी का नाम है यहाँ पर न्याय दर्शन में मोक्ष। ठीक है, और ये सब जो है ना ये इंद्रियां विषय विषयानुभव और शरीर ये सब जो होते हैं ना ये सब क्या है कि दुख के साधन होते हैं। ठीक है, और इसका अनुभव कौन करता है, जीवात्मा करता है, और उसमें अनुभव करने में मन जो है ना वह उसमें सहयोग करता है। मन के द्वारा ही जो है ना ये आत्मा उस वस्तु को अनुभव कर पाता है। चलिए ठीक है, आगे चलते हैं कि मोक्ष अपवर्ग, अपवर्ग का नाम मोक्ष है। स च एक विंशति प्रभेद भिन्न से दुख से, दुख का ही ये विशेषण है एक विंशति प्रभेद भिन्न। तो एक विंशति भेद से भिन्न दुख की जो आत्यंतिक निवृत्ति है उसका नाम है अपवर्ग, और वह कब होगी होगी मोक्ष, तो अंतिम जन्म के बाद। एक विंशति प्रभेदास्तु, वो जो मैंने कहा ना कि आगे बताएंगे, वो बता रहे हैं यहाँ पर कि एक विंशति प्रभेद कौन है दुख के, तो कहा कि शरीरम षट इंद्रियाणि षट विषयाः षट बुद्धयः सुखम दुखं च इति गौण मुख्य भेदात्, कहा कि गौण रूप में और मुख्य रूप में ये 21 प्रकार के दुख माने गए हैं न्याय शास्त्र में, और इन्हीं एक 21 भेदों से अलग जो होता है ना दुख की आत्यंतिक निवृत्ति वही मोक्ष है। इसमें क्या क्या गनाया, एक तो कहा कि शरीर, फिर 6 इंद्रिय, 6 विषय उनके, 6 तरह की उनकी बुद्धि, माने बुद्धि यहाँ पर अनुभव के रूप में लीजिए, 6 प्रकार का अनुभव, सुख और दुख, इतने 21 प्रकार के दुख होते हैं। अगर परीक्षा में पूछे कि न्याय दर्शन में कितने दुख हैं तो बता दीजिएगा 21 दुख हैं, कौन कौन है तो यही गिनाना आपको पड़ेगा। सुखम दुखमेव दुखानुसंगित, कहा कि यहाँ पर तो आपने सुख को भी गिना दिया दुख के भेद में, ये कैसे, तो कहा कि बिना दुख के सुख होता नहीं है, दुख का अनुसंगी होता है सुख, इसलिए सुख को भी जो है न्याय दर्शन वाले दुख के अंतर्गत ही गिनते हैं। बिना दुख के अगर सुख होता ना तो अब तो सुख को दुख नहीं कहते, लेकिन बिना दुख के सुख होता नहीं है। देखिए, प्यास लगी दुख हुआ, फिर पानी पिया सुख हुआ, अगर प्यास नहीं लगी रहेगी तो आपको पानी पीने में सुख का अनुभव नहीं होगा, तो बिना दुख के सुख का अनुभव नहीं होता है, इसीलिए सुख को भी दुख माना गया है। और यहाँ जो कहा कि सुख दुख का अनुसंगी होता है, तो अनुसंग का मतलब होता है अबिना भाव, यानी बिना उसके न हो उसको हम अनुसंग कहते हैं। स्वचायम उपचारो मधुन विष संयुक्ते मधुनोपी विष पक्ष निक्षेपत, कहा कि जैसे मधु में अगर कोई विष मिला दे तो उस वह मधु जो है वह भी विष ही माना जाता है, उसी तरह से सुख में अगर दुख मिला हो तो सुख को भी दुख ही माना जाएगा। मधु में विष मिला हो तो मधु को व्यक्ति क्या करता है, फेंक देता है जहर समझ करके, उसी तरह से सुख को भी दुख मिश्रित होने के कारण दुख समझ करके वह हेय हो जाता है, उसको व्यक्ति छोड़ देता है। तो इस तरह से यहाँ पर विचार हुआ, आज का पाठ यहीं रखते हैं।